टॉपिक लिया था उसके बारे में से आपने जो जो याद रखा आप में से बताइए क्या क्या आपको पॉइंट्स रिटेन हुए, आपको समझ में आए, जिससे कि हम आगे कर सकें। ये पिलर से मत लगे, आगे करिए। पिलर जो है उससे लग के नहीं बैठना चाहिए। कौन बताएंगे? पार्थ, any one point which you can recollect? और इतने और कोई किसी कुछ याद नहीं? क्या हुआ, मेमोरी लॉस? यस, क्या? अच्छा, स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। एवरीथिंग मस्ट हैव सम पर्पस है। वेरी गुड। क्या है अभी डिस्कस करना बाकी है? ओके, और क्या क्या डिस्कस किए थे हम लोग? अरे ये क्या है भाई? यस, हाँ, हमें क्या जरूरत है जानने की, क्रिएटर है कि नहीं है? उसके बिना जाने क्या समस्या रहेगी? उससे हमारे जीवन में व्यवहारिक कुछ फर्क पड़ने वाला है उसको जानने से? हमने कुछ समाज की समस्याओं के विषय में जिक्र किया था, उसका और ये विषय का कुछ संबंध है? थर्ड, व्हाट्स योर नेम? परेश। हमने पहले शुरुआत की थी कि हमारे समाज के सामने आज बहुत सारी समस्याएं हम लोग देख रहे हैं, और फिर हमने टॉपिक शुरू किया था कि भगवान है कि नहीं है, तो क्या संबंध है इन दोनों का? अनएम्प्लॉयमेंट हमने बोला, पॉवर्टी बोला, फिर भगवान। ये भगवान और पॉवर्टी को और ये अनएम्प्लॉयमेंट और ये सबको क्या लेना देना है?
बहुत सारे लोग मानते हैं भगवान नहीं है, इसलिए वो जो कार्य करते हैं वो भगवान हमसे जो कार्य करना चाहिए उससे रिलेटेड है, उसके हिसाब से बहुत सारे प्रॉब्लम।
जब हम ये जानते नहीं है कि भगवान कौन है तो वो क्या हमसे, क्या उनके आदेश हैं? निश्चित रूप से वो तो जानेंगे ही नहीं, और इसीलिए फिर जो भी हमारी पॉलिसीज होंगी वो मैन मेड होंगी, और मैन मेड पॉलिसीज की वजह से वो सब कंफ्यूजन है, बिविल्डरमेंट है। हम यानी खुद अपनी अनेक अनेक समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने शुरू किया था कि ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना कि हमारा क्रिएटर, ये सृष्टि का क्रिएटर कौन है और पर्पस क्या है। और फिर हमने देखा कॉमन इन्फरेंस कि भले ही हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं अपनी वर्तमान स्थिति में, लेकिन आसानी से एक बच्चे भी समझ सकता है कि भगवान हैं। तो आप में से कोई बताएंगे ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप देखते हैं प्रकृति में? क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आपको फोर्स करता है ये सोचने के लिए, ये स्वीकार करने के लिए कि देयर मस्ट बी एन इंटेलिजेंट ब्रेन बिहाइंड दिस क्रिएशन? कुछ आप रीजंस देंगे इस बारे में? जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस किसने देखा है आपने से यहाँ से? इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इलेक्ट्रॉन? नोबडी हैज, बट यू रिमेंबर, यू नो दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन माइंड? कितने लोगों ने माइंड देखा है? नहीं देखा ना माइंड, लेकिन आप सबके पास माइंड है। You believe that there is mind, but you have not seen. So inference, actually, inference. So electron is also seen by inference, understood by inference. वैसे ही प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं हमारे रोजमर्रा में जिसके आधार पर हम इन्फर कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, there must exist God. Who will tell? A few examples.
Growing of tree.
How does it shows that it must be work of God.
एंड
एग्जैक्टली उसका सब उसमें इंफॉर्मेशन होता है कि कैसी पत्तियां इसमें होंगी, कैसा कलर होगा, कितना बड़ा होगा, किस प्रकार का मीठा फल होगा, खट्टा होगा, क्या टेस्ट होगा उसका, क्या सुगंध होगी, कितनी सारी डिटेल्स होती है ना एक पेड़ के अंदर, और वो सब डिटेल बहुत छोटे से एक सीड के अंदर प्रोग्राम होती हैं। माइक्रोचिप से भी बहुत छोटा, उस चिप उसके बीच के अंदर सब कुछ इंफॉर्मेशन होती है। सो इट्स अ ग्रेट वंडर, वंडर की कमी नहीं है नेचर में। एवरीथिंग इज वंडरफुल, एवरीथिंग एवरीथिंग इज वंडरफुल। माइक्रोस्कोपिक लेवल से मैक्रोस्कोपिक लेवल तक सब कुछ वंडर है, हमारे लिए सब कुछ वंडर है। यू कैन टेक एनी स्मॉल थिंग, आप उसकी खोज करने जाएंगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा। एक छोटी सी पत्ती को खोज करने जाएंगे उसके अंदर इतना सब कुछ है कि आप रिसर्च करते रहे करते रहे करते रहे, इट विल नेवर एंड। ये बॉडी के अंदर आप देखिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, आप हैं तो आप लोग कुछ जानते होंगे शरीर के अंदर कितना सब सिस्टमेटिक है। सूरज है, एक सूरज को देख लीजिए, ओ अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने भी कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी बनाए हैं, पर क्या कंपैरिजन है उसका और हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी का? कोई कंपैरिजन नहीं है। हमने भी कुछ स्पेसशिप्स बनाए हैं जो स्पेस में तैर सकते हैं, लेकिन भगवान के जो बनाए हुए स्पेसशिप्स हैं, बिग बिग प्लैनेट्स, कोई कंपैरिजन नहीं है। सो थोड़ी सी बुद्धि यदि हमें है, कॉमन सेंस, तो हम इस निष्कर्ष पे तो पहुंच सकते हैं कि देयर मस्ट बी एन इंटेलिजेंट ब्रेन। जब भी हम बात करते हैं ब्रेन की, डिजाइनर की, ये एक व्यक्ति को रेफर करता है ना, ये सब जो क्वालिटीज हैं ब्रेन, डिजाइनिंग करने की शक्ति, सोचने की शक्ति, ये सब एक पर्सन को इंडिकेट करते हैं। तो इसलिए हमको ये सबसे ये तो समझ में आता है कि कोई इंटेलिजेंट पर्सन होना चाहिए, लेकिन अभी समस्या ये है कि हमको हमारी इंद्रियों के द्वारा वो परसीव नहीं हो रहा है। तो कल हमने साइंटिस्ट को चैलेंज किया था, क्या चैलेंज था हमारा साइंटिस्ट को, हु रिमेंबर्स व्हाट वी चैलेंज्ड? फर्स्ट रेज योर हैंड्स एंड देन टेल। कौन बोल रहे थे? बोली डरिए मत, लेकिन दिस इज एटिकेट, रेज हैंड एंड देन। आप बोल रहे थे हाँ, क्या भगवान नहीं है वो? एग्जैक्टली क्या था? वेल यू हैव बीन अटेंडिंग क्लासेस, ओके, क्योंकि वो कह रहे हैं कि केमिकल्स ही जीवन है और कुछ नहीं है, यानी कि तुम जानते हो कि सब केमिकल्स ही है और तुम सब केमिकल्स को भी जानते हो, तो फिर जानो, डालो केमिकल्स और जिंदा करो, ये हमारा चैलेंज है। तो आज का सेशन शुरू करेंगे कि साइंटिस्ट हमको चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, आपने तो हमको चैलेंज कर दिया, अब हम आपको चैलेंज करते हैं कि भगवान है तो दिखाओ। अभी साइंटिस्ट का चैलेंज है कि आप हमको बोल रहे हैं कि अगर केमिकल से सब कुछ होता है तो केमिकल से करके दिखाओ लाइफ, तो आज हमारे ऊपर चैलेंज है कि यदि भगवान है तो आप हमें हमारी आंखों के सामने दिखाओ। आज हम इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या भगवान हमारे आधुनिक प्रयोगों के ऊपर निर्भर है, भगवान की सत्ता, क्या ये चैलेंज वास्तव में है? तो ये चैलेंज किस आधारभूत धारणा पर टिका है कि यदि भगवान है तो हमें दिखाओ, किस आधारभूत एजम्पशन पर टिका है? हु विल टेल, हु कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक देयर फंडामेंटल एजम्पशन व्हाट दे आर मेकिंग? इफ यू आर चैलेंजिंग लाइक दिस कि अगर भगवान है तो दिखाओ, इसके पीछे एक फंडामेंटल अजम्पशन है जिसके बेस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं ये, इसका मतलब क्या निकलता है इस स्टेटमेंट का? हु विल टेल? थिंक थिंक, भगवान है तो दिखाओ। यस, इसलिए हमें नहीं नहीं एजम्पशन, इस स्टेटमेंट के पीछे उनकी एजम्पशन सिंपल वर्ड, उनकी एजम्पशन है वी कैन सी एवरीथिंग। इस एजम्पशन के ऊपर यह स्टेटमेंट बेस्ड है कि यदि भगवान है तो दिखाओ, यानी कि यदि भगवान होता तो हमें दिखता, और हमें दिख नहीं रहा इसलिए इसका मतलब है कि भगवान नहीं है। यानी कि हम सब कुछ देख सकते हैं, इसलिए जो भी कुछ हमें नहीं दिख रहा है यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इस एजम्पशन के ऊपर ये स्टेटमेंट टिका है, और ये फंडामेंटल एजम्पशन है हमारी पूरी मॉडर्न साइंस की। मॉडर्न साइंस जो है वो कुछ फंडामेंटल एजम्पशन पर टिकी है, जिसमें से एक है एवरी फेनोमिनन विच इज एग्जिस्टिंग कैन बी एक्सप्लेन बाई वेरी सिंपल फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एटसेट्रा। ये एक एजम्पशन है। हु विल रिपीट दिस एजम्पशन? क्या बोला, सब मतलब समझ में आया आपको? योर माइंड इज नॉट हेयर, प्रसाद इज डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर, डोंट वरी। और कोई चिंता है मन में? इस समय एग्जाम चल रहे हैं क्या आपके? नहीं, बारिश भी रुकी हुई है, आपको जाने के लिए हम प्रवस्था भी कर देंगे बारिश होगी तो भी। और कोई चिंता? सो अटेंटिवली बी हियर, सुनो ध्यान से। आजकल ये समस्या है, ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप सब लोग इंटरनेट और टीवी पे बैठते होंगे, और टीवी में तो एक मिनट में कितने सीन बोलते हैं, मे बी 6-7 सीन। तो इससे आपको ऐसी आदत पड़ी हुई है, एक मिनट में आपको 6 अलग अलग चीज देखने को चाहिए। यहाँ एक ही आदमी बैठा हुआ 1 घंटे तक, कैसे आप टॉयलेट करेंगे? दैट इज अ प्रॉब्लम। सो यू कैनॉट कंसेंट्रेट, यू वॉन्ट ऑल द न्यू थिंग्स कमिंग अप। इसलिए फिर आज का शिकायत करते हैं स्टूडेंट कि पढ़ने में हम लोग एकाग्र नहीं कर पाते हैं। कैसे एकाग्र करेंगे? यू हैव बीन कंडीशन्ड टू टिकल योर माइंड एंड सेंसेस एवरी नाउ एंड देन। एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, सो प्लीज लर्न दिस। सो हमने बोला कि पहली अजम्पशन है कि हम पूरी सृष्टि के अंदर जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, उसको हम अपने सिंपल फिजिकल केमिकल लॉज के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली बहुत सिंपल लॉज हैं। हाँ, इसको बोलते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच। रिडक्शनिस्ट अप्रोच मीन्स कॉम्प्लिकेटेड कितना भी संसार हो, लेकिन ये अल्टीमेटली रिड्यूस किया जा सकता है बहुत सिंपल फॉर्मूलाज के ऊपर। और वो सिंपल फॉर्मूला से सब कुछ धीरे धीरे एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसलिए अल्टीमेटली एक साइंटिस्ट ने बोला कि वो दिन दूर नहीं है जब हम यूनिवर्स के क्रिएशन का फॉर्मूले को अपने टी शर्ट के पीछे लिख करके घुमा करेंगे। लाइक मैथमेटिकल फॉर्मूला, सपोज यू हैव वन फॉर्मूला, सो यू कैन सॉल्व सो मेनी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन विद दैट, करेक्ट, इफ यू नो द फंडामेंटल फॉर्मूला। तो दैट इज अजम्पशन। दैट मीन्स अगेन, वॉट इज द फंडामेंटल टू दिस अजम्पशन, कि जो हमारे वर्तमान लॉज की जो हमको जानकारी है, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल लॉज की, दैट इज ऑल इन ऑल, दैट इज एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, दैट लॉज आर परफेक्ट। ये एजम्पशन का ये बेसिस है। आप फॉलो कर रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं कि जो भी फेनोमिनन है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल लॉज से, यानी कि इसका निष्कर्ष निकला कि हमारे जो वर्तमान जानकारी है इन लॉज की, दैट इज परफेक्ट, दैट कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, दैट इज परफेक्ट, वी नो परफेक्ट द लॉज, इट इज अजम्पशन। द नेक्स्ट अजम्पशन, जो लॉज हम अपनी लेबोरेटरी के अंदर देख रहे हैं, जिनको डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करके, सेम लॉज एग्जिस्ट एट ऑल प्लेसेस इन द यूनिवर्स एट ऑल टाइम्स फॉर ऑल लेंथ फॉर ऑल कंडीशंस। सेकेंड अजम्पशन, ये कौन रिपीट करेगा अजम्पशन, इसका मतलब क्या है? वुड लाइक टू रिपीट? ये इंग्लिश की वजह से सब स्टूडेंट्स आर फीलिंग, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, तो आप बता सकते हैं तो प्रयास करेंगे उसको बिल्कुल एक एक उसको हिंदी में बोलने का। तो सेकंड, दूसरी अजम्पशन को कौन बताएगा? अभी जो बताया कि जो हमने लेबोरेटरी के अंदर लॉज को देख रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या जो भी आप अपनी फिजिकल लेबोरेटरी में, फिजिक्स की लेबोरेटरी में जो आप सब लॉज देखते हैं, वो सब यहां से 1,00,000 मील दूर स्पेस में भी वही लॉज हैं और सब जगह पर उन्हीं लॉज के आधार पर वो सब है। ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंट लॉज एग्जिस्ट समवेयर एल्स, सेम लॉज एग्जिस्ट एवरीवेयर। ये उनकी सेकेंड एजम्पशन है। तो पहले तो हम ये एजम्पशन कोई क्वेश्चन करते हैं कि एजम्पशंस की सच्चाई क्या है, क्यों ये एजम्पशंस हैं, ये एजम्पशंस हैं जरूर। जैसे पहला एजम्पशन है कि सब कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉज से एक्सप्लेन किया सकता है, लेकिन आपका हमारा एक्सपीरियंस क्या है। फिजिक्स में पहले एक डाल्टन थ्योरी थी। क्या थी डाल्टन थ्योरी? कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। लेकिन क्या हुआ, एटम्स कैन बी डिवाइडेड फर्दर इंटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अभी और आगे न्यूट्रिनोस एक्सेट्रा। तो वो चली गई थ्योरी। फिर आया न्यूटन थ्योरी। तो न्यूटन लॉज ने जो मोशन है वो सब इक्वेशंस और वो सब का एक्सप्लेन किया। लेकिन जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन्वेंट हुए तो इनके जो मोशंस हैं इनको न्यूटन लॉज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसलिए फिर कौन सी थ्योरी आई? क्वांटम मैकेनिक्स। और ये सब आपस में बहुत कंट्रडिक्ट करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं करी जा रही है। दूसरे एक दूसरे से लड़ते हैं सभी लॉज। सिंपल थिंग, ये हमारे जितने भी लॉज हैं तो वो सब चेंज हो रहे हैं ना। जब न्यूटन था तब उस समय में ये सब लॉज उनको नहीं पता थे जो आज हमको पता है, करेक्ट। तो उसी प्रकार से जो लॉज हमको आज पता है, कौन गारंटी दे सकता है कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद हमारी जो वर्तमान अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की वो चेंज नहीं होगी? तो फिर हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि जो भी चीज हमारी आज की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग से समझ में नहीं आती है, दैट मीन्स इट इज रॉन्ग? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे अंडरस्टैंडिंग तो हर दिन बदलती रहती है, हर दिन नया नया ऐड होता रहता है, सब्सट्रैक्ट होता रहता है, दोनों होता है, ऐड भी सब्सट्रैक्ट भी, पता चलता है ये गलत था, अभी रिप्लेस हो गया। लेकिन हम हर बार अपने इस ज्ञान के शोधन को नाम देते हैं एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। एक्चुअली इट इज प्रूफ ऑफ आवर इग्नोरेंस, इट इज जस्ट अ चेंज ऑफ वर्ड। यू आर सेइंग एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, वी आर सेइंग इट इज प्रूफ ऑफ योर इग्नोरेंस। सो नाउ टुडे यू आर सेइंग, नाउ वी आर नोइंग दिस, टुमारो यू विल से व्हाट यू वर टेलिंग योर स्टडी, इट वॉज रॉन्ग, करेक्ट। ये तो उसका मतलब हुआ। वो कहते हैं ये एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज है। तो परफेक्ट नॉलेज नहीं है यानी कि, क्योंकि वो चेंज हो रही है। परफेक्ट नॉलेज विल नेवर चेंज, लेकिन वो नॉलेज चेंज होती जा रही है, इसका मतलब वो परफेक्ट नहीं है। तो फिर किस आधार पे हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि क्योंकि हमारी वर्तमान फिजिकल केमिकल जो लॉज है उसके द्वारा हम भगवान की उपस्थिति को वो नहीं समझ सकते हैं, हमारी इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं, यही प्रूव करता है कि भगवान नहीं है? नहीं। इवन हमारी मॉडर्न साइंस में भी ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो हम लोग नहीं प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सब यूज करते हैं, उसके बेस से हमारी साइंस चल रही है। इमेजिनरी फिगर आई मैथमेटिक्स में, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, हिजिनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ, ये सब के प्रूफ नहीं है, लेकिन हम लोग सब यूज करते हैं इसको। तो जब हमारे ही जिसको हम यूज कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हम इसको हालांकि प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये है, तो फिर इस हाइपोथेसिस को लेकर चलने में इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम है कि भले ही हम यदि भगवान को इस समय नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये हाइपोथेसिस, ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा डिजाइनर एग्जिस्ट करता है, इस हाइपोथेसिस को लेकर चलने में क्या प्रॉब्लम है? साइंस मीन्स वॉट, हाउ द साइंस, कैसे साइंस की थ्योरी डेवलप होती है? आप पहले एक ऑब्जर्वेशन के आधार पर, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक हाइपोथेसिस बना के चलते हैं, और फिर उसके अनुसार कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके, फिर उसको एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करके एक थ्योरी बनाते हैं, और फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि हर कंडीशन में थ्योरी एप्लीकेबल होती है कि नहीं, आपकी हाइपोथेसिस सॉरी, और उस हाइपोथेसिस को फिर आप थ्योरी कहते हैं। तो हमारी सिंपल प्रपोजिशन है कि आप अपनी वर्तमान साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं इस यूनिवर्स को। क्या कर पा रहे हैं एनीबडी? क्या हमारी वर्तमान साइंटिफिक थ्योरीज ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को, कॉन्शियसनेस, लाइफ की उत्पत्ति को एक्सप्लेन कर पा रही हैं? आप में से किसी को जानकारी है ऐसी किसी थ्योरी की जो एक्सप्लेन कर रही हो? देयर इज बीन नो वन थ्योरी विच इज एबल टू एक्सप्लेन ऑल द फेनोमेना। बहुत सारी थ्योरी हैं बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन वन सिंगल थ्योरी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। इसलिए खोज है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, इसकी खोज है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, विच वन थ्योरी विच कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो एक्चुअली दैट इज करेक्ट, देयर शुड बी सम थ्योरी विच कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, एवरीथिंग शुड फिट इन, सब आपस में सेट हो, तभी हम कह सकते हैं कि वो सही है। तो बिविल्डर्ड है, नहीं है कोई थ्योरी ना लाइफ के बारे में, केवल हाइपोथेसिस है, एजम्पशन, बिग बिग एजम्पशन, जो वाइल्ड वाइल्ड एजम्पशन, वाइल्ड एजम्पशन, जैसे सब केमिकल से आया है, डार्विनवाद, डार्विन थ्योरी, वाइल्ड एजम्पशन। यू नो अबाउट मिसिंग लिंक? मिसिंग लिंक के बारे में सुना है आपने डार्विन में, बायोलॉजी के स्टूडेंट, मिसिंग लिंक। सो मिसिंग लिंक तो एक इवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार जो हमारे अलग अलग स्टेजेस बनाए हैं तो उसमें ये बीच बीच की स्टेजेस सब मिसिंग है। हमारे फॉसिल रिकॉर्ड में से हम बोलते हैं कि ये फॉसिल रिकॉर्ड सब्सटेंशिएट करता है हमारी डार्विन थ्योरी को। फॉसिल रिकॉर्ड तो आपको पता है ना क्या मतलब है, वो खगोल, वो भूगर्भ शास्त्री, वो जो सब अंदर से खोद खोद के निकालते हैं अवशेष, उसके आधार पर अलग अलग स्टेजेस को कहते हैं कि देखो डार्विन की थ्योरी प्रूव होती है इस फॉसिल से। लेकिन बहुत सारी स्टेजेस जो बीच बीच में बनाई गई हैं उनके कोई फॉसिल रिकॉर्ड है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड मिसिंग लिंक। तो ऐसे बहुत सारे गैप्स हैं, अगर आप डिटेल में जाएंगे तो हम केवल वो हाइपोथेसिस दे रहे हैं बट एक्चुअली वी डोंट नो, साइंटिफिकली वी कैनॉट टेल। इवन नेचुरल सिलेक्शन, इफ यू सी नेचुरल सिलेक्शन, तो बोलते हैं कि नेचर सेलेक्ट, तो ये स्टेटमेंट देना आसान है लेकिन इस चीज को हाइपोथेसिस से थ्योरी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स चाहिए। हाइपोथेसिस और थ्योरी में बहुत अंतर होता है। हाइपोथेसिस इज व्हाट यू एज्यूम बाय ऑब्जर्वेशन, यू गिव अ प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन, लेकिन उसको थ्योरी में, साइंटिफिक थ्योरी में कन्वर्ट करने के लिए ईच एंड एवरी स्टेप नीड्स टू बी सब्सटेंशिएटेड। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि ये सब नेचुरल सिलेक्शन से आया है, तो आपको बताना पड़ेगा एमीबा से, बैक्टीरिया, उसके बाद फिर आगे और फर्दर प्लांट्स, फिशेस, हर स्पीसीज एक योनी से दूसरी, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज के बीच में क्या चीज थी जो नेचुरल सेलेक्ट की और क्यों, उसकी क्या एडवांटेज थी, किस लिए, उसका सब जेनेटिक मटेरियल डिफरेंस क्यों सेलेक्ट हुई वो चीज, ये सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तब आप कह सकते हैं कि वी हैव नाउ गॉट इट इन अ थ्योरी फॉर्म, प्रूव्ड थ्योरी कि नेचुरल सिलेक्शन से ऐसा होता है। अदरवाइज इट इज जस्ट लाइक एनी स्मॉल चाइल्ड कैन से एनीथिंग। जैसे कोई बच्चा कार देखे पहली बार, आज तक उसने केवल घोड़ा गाड़ी देखी है, जानवर चलती गाड़ी देखी है, कार देखे तो बोले ये तो वंडरफुल है, ये तो अपने आप बिना जानवर के चलती है, ऑटोमेटिक चलती है। तो उसको पता नहीं है कि ऑटोमेटिक नहीं है, ये एक आदमी ने सिस्टम बनाया है, इंजन बनाया है, उसके बेस पर चलती है, ये भी एक व्यक्ति ने बनाया है। तो ऐसे ही हमारी जो थ्योरीज हैं, वर्तमान थ्योरी हैं, वो केवल एक हाइपोथेसिस है, लाइक दैट बिग बैंग थ्योरी। सो मेनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड, अनलेस वी आंसर दिस क्वेश्चंस वी कांट टेल दैट दिस इज प्रूव थ्योरी। तो जब एक तरफ हमारे पास ऐसी स्थिति है कि हम लोग समझा नहीं पा रहे हैं अपनी वर्तमान एजम्पशन से, हमारी हाइपोथेसिस से हम समझा नहीं पा रहे हैं, तो क्या ये साइंटिफिक नहीं है कि हम दूसरी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए ओपन माइंडेड हों? क्या ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं है? या तो आप अपनी हाइपोथेसिस से सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं दूसरी किसी हाइपोथेसिस की, लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो फिर क्या ये साइंटिफिक नहीं है, ब्रॉड माइंडेडनेस नहीं है कि फिर आप एक दूसरी हाइपोथेसिस को लेकर चलो कि ओके, जो कि ऑब्जर्वेशन से ज्यादा रीजनेबल है, ज्यादा लॉजिकल है। आप हाइपोथेसिस को कौन सी हाइपोथेसिस आपको लेनी चाहिए जो आपके ऑब्जर्वेशन से ज्यादा रीजनेबल है? तो आप बताइए मेरे को, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमने बताया कि हर चीज हम देखते हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक चल रही है, सब प्लैनेट्स का मूवमेंट कितना सिस्टमैटिक है, एटॉमिक लेवल पर भी कितना सिस्टमैटिक है, एक एक एटम्स का अंदर कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये दोनों किस चीज का बना है? कार्बन। लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज कितनी अलग है, जस्ट बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, चेंज इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सी व्हाट अ ब्यूटीफुल सिस्टम पैटर्न। आपने कभी, आप जानते हैं मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसके अंदर बहुत अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ड्रॉन होते हैं, वर्कर्स होते हैं, क्वीन होते हैं, उनके सबके अलग अलग घर होते हैं अंदर, अलग अलग अपार्टमेंट्स होते हैं। इवन चींटी, आप सब शायद डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखते रहते होंगे, तो उनके भी सब अंदर स्टोर रूम होते हैं, जैसे ग्रास स्टोरेज रूम। आप यहां देखिए प्रकृति का, हमको एक छोटा सा ओवर हेड वाटर टैंक लगाने में और वहां तक पानी उठाने में कितना एनर्जी लगाना पड़ता है। एंड जस्ट सी हाउ गॉड इज, कितना सारा पानी, अभी सूरत में बाढ़ आई, कितना फीट पानी खड़ा हो गया, कहते हैं 35 फीट तक पानी चला गया, कितना पानी, जस्ट सी। उतना पानी यदि हमको फायर ब्रिगेड से डालना पड़े तो हमारा क्या हाल हो जाएगा, आप सोच सकते हैं? इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल टास्क। और नेचर के लिए ऐसा जैसे कि जस्ट चाइल्ड प्ले। जब वो भूकंप आया था 2001 में, आया समवेयर 2000 और 2001 समवेयर, सो वी वर सीइंग हियर, ये जो बड़ी बिल्डिंग है पास में, इट वाज जस्ट वॉबलिंग लाइक दिस, अनइमेजिनेबल। एंड देन वी वेंट टू दैट कच्छ एंड ऑल, बिग बिग बिल्डिंग, जस्ट एक पांच छह एक मिनट के अंदर पूरा, कितनी पावर है, जस्ट इमेजिन। तो क्या लॉजिकल है, कौन सी हाइपोथेसिस लॉजिकल है कि इतना सब जो शक्ति है, इतना सब जो वेल प्लान्ड है ये पूरी सृष्टि, क्या ज्यादा लॉजिकल है, कौन सी हाइपोथेसिस ज्यादा लॉजिकल है कि एक डिजाइनर है ये हाइपोथेसिस लेके चले कि ये सब अपने आप बिना किसी इंटेलिजेंट डिजाइन के हुआ है, ये हाइपोथेसिस ज्यादा लॉजिकल है? बताइए आप मेरे को, आप बताइए कौन सी हाइपोथेसिस ज्यादा लॉजिकल है? आप क्वेश्चन सेम समझे आप? तो कौन सी हाइपोथेसिस ज्यादा सरल है, तर्क से समझी जा सकती है, स्पष्ट है, क्लियर है? वो ज्यादा रीजनेबल है। कैसे? नहीं, आप क्या कह रहे हैं, बिना किसी डिजाइनर के सब हो रहा है? नो, गॉड मीन्स डिजाइनर, बिना किसी डिजाइनर मीन्स अपने आप। अपने आप हो रहा है सब, जब संबड़ी कर रहा है तो अपने आप कैसे हो गया? अपने आप मीन्स देर इज नो वन डूइंग इट, इट जस्ट हैपनिंग बाई चांस। यानी आप कह रहे हैं भगवान के द्वारा, कोई क्रिएटर के द्वारा हो रहा है? ओके, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस लेके चलने में क्या प्रॉब्लम है? जबकि नॉट ओनली प्रॉब्लम, लेकिन ये हाइपोथेसिस ज्यादा लॉजिकल है। इस हाइपोथेसिस क्यों लेके चले? तो क्यों लेके चले, प्रॉब्लम यहां है कि अगर हम ये हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि एक कोई क्रिएटर है, तो वो तो एक विश्वास का, फेथ का विषय हो गया, और साइंस मीन्स नो फेथ। हम तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी पे बिलीव करते हैं, वी बिलीव इन व्हाट वी सी, एंड दिस मीन्स दिस हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन एज्यूमिंग समथिंग विच वी कैनॉट सी। तो ये तो एक फेथ का विषय हो गया। तो रीजन और फेथ, इन दोनों में कहां सामंजस्य बैठता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रीजन एंड फेथ? तो जो साइंस कहते हैं कि हम लोग फेथ, फेथ की, ये तो फेथ है, तो आपका अंधा विश्वास है। तो एक होता है अंधा विश्वास और एक होता है प्रैक्टिकल फेथ। तो क्या आप ये सोचते हैं कि जो आज की मॉडर्न साइंस है, या जो आप सब लोग हैं जो सब यूज कर रहे हैं, आप कोई भी चीज फेथ पे, यू आर नॉट यूजिंग फेथ एट ऑल इन योर लाइफ? एवरीथिंग यू आर फॉलोइंग इज एग्जैक्टली व्हाट यू परसीव बाय योर सेंसेस एंड देन ओनली यू डू। कितने आप में से जो लोग फेथ, बिना किसी फेथ के हर चीज ऑब्जेक्टिवली जब तक अपनी इंद्रियों से देखते नहीं हैं उसके अलावा किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते हैं। रियल साइंटिस्ट कौन कौन यहां उपस्थित हैं? रियल साइंटिस्ट जो फेथ के अलावा और किसी पे फेथ पे बिल्कुल चलते ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल, है कोई यहां? आप है? मैनी अ टाइम्स, मैनी अ टाइम्स बट वाई नॉट ऑल द टाइम्स? कुत्ते के सेंसरी परसेप्शन ज्यादा है, लेकिन फेथ की यहां तक मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहली चीज हमारे पिता कौन है? आप में से कितने हैं ऑब्जेक्टिव बिलीवर्स अपने पिताजी के बारे में, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट बेस पे समझाया कि आपके पिताजी वही हैं जिनको आप पिताजी मानते हैं? नहीं है कोई? तो हम उनको अपनी मां की अथॉरिटी के आधार पर मानते हैं, क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ, जब कंसेप्शन हुआ, उस समय में हम नहीं थे, इसलिए वो हमारे सेंस परसेप्शन के बियॉन्ड की चीज है। इसलिए कैसे आप उसको सेंस परसेप्शन से जान पाएंगे? माता पिता जो संतान को जन्म देते हैं तो जन्म देने से पहले से वो हैं, आप उस समय नहीं हैं जब जन्म दिया जा रहा है, तो आप कैसे जान पाएंगे अपनी इंद्रियों से? यानी कि क्या रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी इंद्रियों की एक लिमिटेड शक्ति है, इसलिए आप उस शक्ति के दायरे के अंतर्गत ही चीजों को जान सकते हैं अपनी इंद्रियों से, उसके बियॉन्ड की चीजों को आप नहीं जान सकते हैं। तो उसके बियॉन्ड की चीजों को जानने के लिए फिर आपको आवश्यकता पड़ती है जो लोग जानते हैं उनसे सुनने की। ये हर दिन हम अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम की हर चीज जो है केवल अपने ऑब्जेक्टिव बिलीव करते हैं। आप लोग बस में बैठते हैं, सरकारी बस में, आपको एक विश्वास होता है कि ये जो ड्राइवर है ये चलाना इसको आता है गाड़ी, आप अपनी पूरी जान को देते। आप नाई की दुकान में बैठते हैं शेव कराने के लिए, आपको विश्वास होता है कि ये चक्कू है लेकिन ये नाई जो है मेरे को काट नहीं देगा, सिर्फ जस्ट उसके पास में चक्कू यही है, लेकिन आपको पता है कि ये इसका प्रोफेशन है, ये काटता नहीं है, ये गला नहीं काटता है, ये केवल शेव करता है। आप यहां बैठे हैं, आपको पता है इस्कॉन मंदिर है, इन लोगों ने ये छत बनाई होगी, ये स्ट्रक्चर इंजीनियर को बुला करके उससे डिजाइन करा के बनाई होगी, ऐसा नहीं कि बस ये स्वामी जी लोगों ने अपना आप कुछ ना कुछ कर दिया, वो कभी भी गिर सकती है, ऐसा नहीं होगा। ये आपको ये विश्वास है, आप इसलिए यहां बैठे हैं। आप कुछ खा रहे हैं यहां बाहर रेस्टोरेंट से, तो आपको अगर ये विश्वास नहीं, ना जाने इन्होंने कुछ पॉइजन डाल दिया हो, कहीं कुछ अमेरिका की कुछ चाल होगी, सब यूथ को मार देना है इंडिया के। एवरी मोमेंट वी हैव टू हैव फेथ, अदरवाइज हाउ वी विल लिव? जब आप चलते हैं तो आपको ये विश्वास है कि अगले ही क्षण ये जमीन जो है नीचे धस नहीं जाएगी, तभी तो आप पैर रखते हैं। अगर आपको ये विश्वास नहीं हो तो इस विश्वास का आधार क्या है? आप हर समय सिस्मोलॉजी सिस्मोस्कोप ले घूमते हैं हर स्टेप पर कि मैं तभी आगे स्टेप रहूंगा जब पता लगे कि ये धरती जो है हिलने नहीं वाली है, अभी आने वाले 5 मिनट में कोई हलन नहीं आने वाला है। नहीं, सो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई भी चीज बिना फेथ पे नहीं कर रहे, हम तो हर चीज केवल जब तक हमको अपनी साइंस से प्रूव नहीं होता भी नहीं, फेथ इज एसेंशियली। में एक बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो उसको वो माँ बाप की बात मान करके, माँ बाप के विश्वास से, बेटे जाओ स्कूल जाओ और वहां सीखो, पढ़ने के लिए भेजा जाता है उसको। ऐसा नहीं ना कि बच्चा पहले घुसते ही क्वेश्चन करना शुरू कर दे, आप जो भी कह रहे हैं मैं कैसे विश्वास करूं, फर्स्ट डे एंट्रेंस। तो अगर वो कॉलेज में एडमिशन लेता है, स्कूल में एडमिशन लेता है, तो पहले उसको इस अपने पहले माँ बाप के ऊपर विश्वास होता है कि माँ बाप मेरे हितैषी हैं, वो जो कह रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं, वो गलत नहीं कहेंगे। और फिर वो जब कहते हैं कि बेटे जो टीचर कहे उसको सुनना, तो फिर उसको टीचर पे फेथ होता है, तो फिर जो टीचर बोलते हैं उसको सुनता है, और धीरे धीरे सुन सुन के जो चीज को पहले बिल्कुल सही में नहीं आ रही थी उसको सही में आने लगती है। आप अपनी हर एक इंजीनियरिंग क्लास में जाते हैं जब नेक्स्ट ईयर में, या अभी तक जो गए हैं, तो कितने सारे ऐसे सब्जेक्ट मैटर होंगे, हर सब्जेक्ट मैटर जब हम शुरुआत करते हैं तो हमको नहीं पता लगता है, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हर चीज के अंदर बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सॉल्व करने के बाद एक थ्योरम निकली होती है। तो हम लोग अगर पहले ही जाएं, फर्स्ट टाइम क्लास में जाएं, और हमको यदि कुछ लगे ये जो सिंबल है ये तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो गलत बता रहे हैं मेरे को, ये जो इक्वेशन लिखी है ये तो मेरे को सही में नहीं आ रही, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की उसके अनुसार तो ये इक्वेशन ऐसी होती नहीं है, तो इसलिए ये गलत है, इसलिए मैं कल से नहीं आऊंगा क्लास में। तो दिस इज नॉट द वे टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। इसलिए पूरा एजुकेशन सिस्टम है कि हम जानवर जैसे होते हैं, उनको ट्रेन करने के लिए एक सिस्टम होता है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है ये समझने में कि हमारी जो वर्तमान इंद्रियां हैं वो सीमित शक्तियों वाली हैं, इसीलिए ऐसे विषयों को समझने के लिए जो हमारे इंद्रियों के परे हैं हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, और उस प्रॉपर ट्रेनिंग से हम ऐसी चीजों को समझ पाएंगे जो हमें आज समय नहीं आ रही है, जिनको हम आज नहीं समझ पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, वो ऐसी चीज संभव हो जाएंगी। आज आप जो इंजीनियरिंग लेवल पे आए हैं, आज से 10 साल पहले आप उस चीज को नहीं समझ सकते थे ना, लेकिन आप समझ सकते हैं, आप समझा भी सकते हैं दूसरों को, करेक्ट। तो पहली बात तो हमको ये समझ लेनी चाहिए कि हमारी इंद्रियां उनकी सीमित शक्ति है, वो अपूर्ण है, वो परफेक्ट नहीं है, कि जो भी मेरी इंद्रियों से मुझे दिखेगा या जो भी मेरी ब्रेन से, बुद्धि से जो मैं समझूंगा वही मैं विश्वास कर सकता हूं, और उसके बिना कुछ भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। नहीं, एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप उसको नहीं जानते हैं, आप उसको समझने की शक्ति नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है। तो बेसिकली हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, उनमें हमेशा से व्यक्ति के अंदर ये चार डिफेक्ट हैं, एक तो उसकी इंद्रियां पूर्ण हैं, एक उसके अंदर हमेशा गलती करने की क्षमता है, झूठ बोलने चीटिंग प्रोपेंसिटी है, और गलती करने की क्षमता है उसके अंदर, और भ्रमित होने की क्षमता है, ये चार डिफेक्ट हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ चार्ट हैं, हम आपको चार्ट दिखाएंगे कि देखिए हमारी इंद्रियां कैसे अपूर्ण है, कैसे हम भ्रमित हो सकते हैं, कैसे हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है। लाइए इधर, जस्ट मिनट, कम है। जैसे आप लोग
डाउन, बिकॉज इफ यू सो एवरीबॉडी विल सी हियर, नोबडी विल लिसन टू मी।
दिन में आप लोग आकाश में देखें, क्लियर स्काई है, तो अगर आप ये कंक्लूजन निकालें क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा स्काई में, क्लियर स्काई है, केवल सूरज है बस और कुछ नहीं, तो क्या ये सही है? अनलिमिटेड प्लैनेट्स एंड अनलिमिटेड थिंग्स आर देयर, बट यू आर नॉट एबल टू सी दैट। आप ऐसा ही बोलते हो कि मैं दिखने रहा कुछ नहीं है, सीमित इंद्रिय। तो उसी कुछ उदाहरण आप यहां देखिए, दिखाइए, एक ये फिगर है, आप इसको ध्यान से देखिए, जाइए वहां आगे आगे से दिखा दीजिए, ऐसे उधर से, ऐसे आगे से, यू गो फ्रॉम दैट साइड टू दिस साइड, ऐसे आगे से घूम के आइए। ये एक लेडी का फोटो है, आपको उस लेडी का एज बताना है कितना है, अप्रोक्सीमेट एज। तो कितने स्टूडेंट्स
के अनुसार इस लेडी का एज मस्ट बी समथिंग 16 to 25. ओके 10-20%. और कितने स्टूडेंट हैं जिनके अनुसार इसका एज मोर देन 60 इयर्स? अगेन 10-20%. तो एक ही लेडी है लेकिन आप लोग अलग अलग एज बता रहे हैं, तो ये एक इल्यूजन है ना, ये हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस. आप ही यहीं बैठे बैठे आप लोग देखिए, आप में से दो गुट हो गए, एक कह रहे हैं कि इसका एज 20 इयर्स है, एक कह रहे हैं इसका एज 70 इयर्स है. हाँ, तो अभी आपस में बाद में क्लास में आप जो दोनों लोग मिल लेना आपस में, क्यों कैसे बताएंगे. सेकंड एग्जाम्पल, जो लोग 20 कह रहे हैं वो 70 वाले को समझा देना, 70 कह रहे हैं 20 वाले को समझा देना, कैसे 70 था. ऐसे पकड़ लो ऐसे, यस या जस्ट गो फास्ट. या हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी ए ट्राइंगल इन बिटवीन? सब देख रहे हैं लेकिन वो ट्राइंगल की लाइंस ड्रॉ है, देयर इज एक्चुअली नो ट्राइंगल देयर, लेकिन आप सब ट्राइंगल देख रहे हैं. ओके नेक्स्ट. ये फिगर में आपको क्या दिख रहा है, कितने लोगों को दो कप दिख रहे हैं? एक ही कप दिख रहा है, एक्चुअली ढंग से ड्रॉ नहीं किया है. और कितने लोगों को ये दो फेस दिख रहे हैं? दोनों दिख रहे हैं, एक ही आदमी को दोनों दिख रहे हैं, देखो. फिर ये है, देन यू कैन रीड दिस ए बी सी और 12, 13, 14 बोथ वे. सिंपल, नॉट बिग थिंग. थैंक यू. इसको रोल करके रख. सिंपल हम जो कहना चाह रहे हैं कि हमारी इंद्रियां पूर्ण है. आप देखते हैं सूरज को, हाँ? कितना बार दिखता है हमको सूरज? इतना. लेकिन होता है कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है ना. तो फिर कैसे हम अपनी इंद्रियों पर इतना विश्वास कर लें कि हम तो अपनी इंद्रियों से जो देखते हैं उसी को सही मानते हैं? क्या है आपकी इंद्रियां? फिर हम सब लोग गलतियां करते हैं. बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बड़ी बड़ी गलतियां किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां किए हैं. पहले कुछ कुछ सोचते थे कि ये ब्रेन जो है वो ब्लड को ठंडा करने के लिए है, ऐसा पहले धारणा थी. ये अर्थ जो है ये फ्लैट है, ऐसा मानते थे. बहुत सारी चीज मानी, जाने क्या क्या. फिर हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, कभी कभी अंधेरे में आपको रस्सी दिखेगा आपको एकदम डर लग जाएगा, साफ है, एक हिसाब जाके देखते हैं. सबसे बड़ा भ्रम क्या है हम सभी को? हम सबको एक बहुत बड़ा भ्रम है, इल्यूजन है. यस वेरी गुड, आई नो एवरीथिंग व्हेन वी नो नथिंग. लेकिन उसका आधार है उस भ्रम का, हम सब लोग सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं. अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं, आपका नाम? नीरव. आपके पेरेंट्स का नाम? फादर का नाम? अरविंद भाई. कौन से गांव के हैं आप? राजकोट. कितना उम्र है आपका? 20 साल. तो ये सब जो वो पहचान दे रहे हैं किसकी दे रहे हैं? शरीर की दे रहे हैं. यानी कि वो तो बिल्कुल नेचुरली हम सोचते हैं कि हम शरीर ही और कुछ है ही नहीं. हमारी एज ही 20 इयर्स है, हमारा जन्म वही हमारा स्थान है राजकोट, और हमारे पिताजी यही हैं, और हम लड़के हैं या लड़की हैं या भारतीय हैं अमेरिकन हैं. विदाउट ए सेकंड थॉट वी थिंक इट इज ए एब्सोल्यूट परफेक्ट नॉलेज दैट आई एम दिस. लेकिन हम सही नहीं है, हम आत्मा है. कौन बता, कौन प्रूव कर सकता है कि हम सही नहीं, हम आत्मा है? यहीं बैठे बैठे लॉजिक से Yes.
Every moment we are changing.
Hmm.
Because in childhood.
Every moment we are changing.
Our body is
changing. Our body is changing.
But we are
not changing. Yes. आप में से कितने लोग हैं जो अपनी बॉडी को बॉडी चेंज हो रही है इसको स्वीकार कर रहे हैं? बॉडी चेंज हो रही है ना. बचपन एक साल का फोटो देखा है आपने घर में अपने, है किसी की? कभी कोई मदर दिखा दी, बेटे देखो तुम ऐसे थे, तो हम लोग रिकग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे. लेकिन हमारे पेरेंट्स क्या हमको एक ही व्यक्ति की तरह से मानते हैं कि ये मानते हैं कि ये एक साल का ये अलग आदमी था, दो साल पे अलग आदमी, तीन साल पे अलग, और बीस साल पे भी अलग दूसरा एक आदमी है. सुबह उठते हर दिन एक नया आदमी, आगंतुक, न्यू आइए. नहीं, जो सुबह उठते उठाते रहे, बेटे उठो दिन हो गया, कल तुम इतने में सोए थे, वही आदमी, सेम पर्सन इज कंटिन्यूइंग, लेकिन बॉडी चेंजिंग. दैट मीन्स कि हम चेंज नहीं हो रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी चेंज हो रही है, यानी कि हम बॉडी से अलग हैं. लेकिन आप देखिए तो हर क्षण हम लोग सोच रहे कि वही. आप में से सपने कितने लोग नहीं देखते? सब देखते हैं. तो रात को जब सपना देखते हैं आप लोग, तो कभी कभी आप देखते हैं सपने में आप बहुत डर जाते हैं, आपके पसीने छूट जाते हैं, कई बार चीखते हैं आपके क्लासमेट, वो कई बार आप खड़े आते हैं, डर गया था, क्या हो गया था भाई, मेरे पीछे शेर पड़ा हुआ था, मैं ऊपर बिल्डिंग में से बीबीएम की वो न्यू हॉस्टल की बिल्डिंग में छलांग लगा रहा था मैं. अच्छा, लेकिन आप तो आपकी आप तो यहां थे, तो आप देखिए आपको पसीना भी निकल जाता है, सब कुछ जाता है, यानी कि आप प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस कर रहे थे. तो दिन में भी अगर आप ऊपर छत पे से कूदने का सोचें तो आपके पसीने छूट जाएंगे ना, तो रात को भी ऐसा ही हो रहा है ना. तो वो भी एक एक्सपीरियंस है, ये भी एक एक्सपीरियंस है, ये भी एक ड्रीम है, तो वो भी एक ड्रीम है. रात को आपको ये पता नहीं रहता ना कि आप बीबी में पढ़ रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, याद रहता है आपको रात में कि आप कौन है? रात में आपकी आइडेंटिटी वही होती है जो सपने में होती है, और दिन में आपकी आइडेंटिटी अलग होती है. दिन में रात की चीज भूल जाते हैं, रात में दिन की चीज भूल जाते हैं. तो कौन सी सही है इसमें से, कौन सी गलत है? आप रात वाली आइडेंटिटी सही है कि दिन वाली आइडेंटिटी सही है? क्यों? क्योंकि बड़ा सपना है, ज्यादा लंबे ड्यूरेशन में चलता है. तो आप में से कई आपके हॉस्टल में ऐसे लड़के होंगे जो 12-12 घंटे भी सोते होंगे, तो फिर तो इक्वल 50% हो गया. 12 घंटे ये वाला सपना है, 12 घंटे ये वाला सपना है. 12 घंटे आइडेंटिटी अलग है, 12 घंटे आइडेंटिटी अलग है. लेकिन फैक्ट ये है कि हम हर रात को अपने सूक्ष्म मन के द्वारा एक अलग सूक्ष्म मन सूक्ष्म शरीर में जा रहे हैं. रात को हमारा एक स्थूल शरीर नहीं मिलता है, सूक्ष्म शरीर में हमारी आइडेंटिटी रहती है, और दिन में एक ग्रॉस बॉडी में हम लोग रहते हैं. बस ये अंतर है. तो ये हम सबको भ्रम है. और फिर चीटिंग प्रोपेंसी, कल ही हमने आपको उदाहरण दिया, हम सब लोग चीटिंग करते हैं. तो साइंटिस्ट लोग भी बड़े बड़े चीटर्स हैं. आज से काफी साल पहले ऐसा सोचा जाता था कि जो भी हमारे राजनीतिक नेता हैं वो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, वो हमारा ध्यान रखेंगे, हमारे स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो सब जो कहेंगे अच्छा कहेंगे, ऐसा हम सबको विश्वास था. लेकिन अभी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, आज कोई विश्वास करता है लीडर्स के ऊपर? क्योंकि फ्रॉड पता लग रहे हैं. तो ऐसे हमारे साइंटिस्ट काफी समय तक ये सब लोग मानते थे कि साइंटिस्ट तो हेवनली प्लैनेट से आए हुए देवतागण हैं, बिल्कुल दिल के सच्चे इंसान हैं. लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हमको धीरे पता लग रही हैं कि साइंटिस्ट भी देर आर द ह्यूमन बींग्स, उनको भी पैसा चाहिए, उनको भी अपनी प्रतिष्ठा चाहिए, और वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं. तो साइंटिफिक सर्कल के अंदर अंदर बहुत कुछ चलता है, बहुत बड़े फ्रॉड होते हैं. जैसे अभी हमने आपको बताया कल ही मून लैंडिंग फ्रॉड के बारे में, आप लोग जब जाएंगे तब पता लगेगा. उनका हर साल का एक एक फिक्स्ड गवर्नमेंट की तरफ से कोटा होता है रिसर्च के लिए. तो कुछ रिसर्च हो ना हो, उनको रिसर्च कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर उतना ही कम हो जाएगा पैसा. इसलिए कई बार फ्रिज मंगा लेते हैं, ओवंस मंगा लेते हैं, और फ्रिज में पानी रखते हैं पीने के लिए, और दिखाते हैं रिसर्च के लिए काम चल रहा है ये सब. सो मैनी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं हमारे स्कूल में, सो दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन देयर. बहुत बड़े स्केल पे फ्रॉड है ये, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है. वो जो भी कहते हैं सबके सब बोलते हैं, तो कोई पता नहीं लगा पाता कि सही है कि गलत है. बड़ा मुश्किल है,
सबके सब एक ही आवाज में बोलते हैं, इट्स अ फुल ब्रिज इंस्टीट्यूट इट्सेल्फ, तो चीटिंग प्रोपेंसिटी है। तो इन चार डिफेक्ट की वजह से हम कैसे परफेक्ट नॉलेज गेन कर सकते हैं, इसीलिए हमारी साइंटिफिक थ्योरीज बदलती रहती हैं, समझे आप। तो इसीलिए फिर हमें यह सोचना चाहिए कि यदि ये तरीके से हम परफेक्ट नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, सीइंग इज बिलीविंग वाला जो प्रोसेस है, तो ये इम्परफेक्ट प्रोसेस है क्योंकि हमारी सेंसेस पे डिपेंडेंट है, इसलिए इससे हम परफेक्ट नॉलेज नहीं गेन कर सकते। तो आप ये कह सकते हैं जैसे साइंसेस के अंदर देखें तो हमारी देखने की शक्ति लिमिटेड है, तो आप बोल सकते हैं ना हम टेलीस्कोप है हमारे पास कि हम इन आंखों से नहीं देख सकते लेकिन टेलीस्कोप से हम देख सकते हैं, तो जो हम इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं वो हमारे लिमिटेशंस को पूरा कर देती हैं, फिर हम लिमिटेड नहीं रहते, फिर हम असीमित, फिर हम परफेक्ट रहते हैं। क्या ये सही बात है, क्यों सही नहीं है पार्थ? और टेलीस्कोप का आप किन आंखों से देख रहे हैं? अल्टीमेटली नहीं आंखों से देख रहे हैं, टेलीस्कोप को बनाने वाली इंद्रियां कौन सी हैं? ये इंद्रियां हैं, सो अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो इम्परफेक्ट, करेक्ट। तो ये सिंपल कंक्लूजन है, हम सिंपल लॉजिक के बेस पे काम बात कर रहे हैं कि क्योंकि हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं, साइंटिस्ट लोगों का जो क्लेम है कि हम केवल जो चीज देखते हैं उस पर बिलीव करते हैं, ये बकवास है। तो फिर ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका क्या है? एक तो है जब भगवान हमको दिखेंगे तभी हम विश्वास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे और तब तक बैठे रहेंगे ऐसे, एक तो ये तरीका है। साइंस हमको दो चीज के लिए प्रॉमिस करता है, एक नॉलेज के लिए और एक प्लेजर के लिए, कि विद साइंस वी विल बी एबल टू नो एवरीथिंग एंड विद साइंस आवर लाइफ विल बिकम परफेक्टली हैप्पी। एक था द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि साइंटिफिक एडवांसमेंट से हम टाइम सेविंग मशीन्स बनाएंगे जिससे आदमी के पास सब फ्री टाइम बहुत होगा, सप्ताह में केवल 14 घंटे काम करना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन्स होंगी, आपका सब काम बैठे बैठे सब रिमोट से हो जाएगा, हर चीज इतनी इजी हो जाएगी, आपका लाइफ में फ्री टाइम ही फ्री टाइम होगा और उस फ्री टाइम में आपको एंटरटेन करने के लिए टेलीविजन, वीडियो गेम्स, ये सब चीजें होंगी, कितना अच्छा जीवन हो जाएगा, रिलैक्स लाइफ। पर वास्तव में क्या हो रहा है, आज जीवन रिलैक्स है, 14 आवर्स वीक की जगह 14 आवर्स पर डे है, और नॉलेज मिली इतनी रिसर्च के बाद भी एवरीथिंग इज अनक्लियर स्टिल, लेकिन वो क्या करते हैं अपने इस प्रॉमिस को क्योंकि पूरा नहीं कर पाए, इसको ढकने के लिए ये छोटे छोटे आविष्कार करके हमारा मनोरंजन करते रहते हैं, छुपाते रहते हैं अपने को, ये देखो अभी हमने मोबाइल निकाल दिया, मोबाइल हाँ देखो हम कितने ग्रेट हैं, मोबाइल निकाल दिया, संतुष्ट रहो इससे, वी आर डूइंग समथिंग फॉर यू, बट व्हाट दे आर मेन क्लेम, दे आर नॉट एबल टू डू इट, दे आर नॉट एबल टू गिव अस एनी सॉलिड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ क्रिएशन, या ओरिजिन ऑफ दिस यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। तो फिर बुद्धिमान वो है जो सोचता है तो ठीक है, फिर दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है कि यदि हम जो परफेक्टली जानता है उससे ज्ञान लें तो सब समस्या हल हो जाएगी। जैसे हमने कहा पिताजी कौन है, अगर आप अपने माता से जानकारी लेते हैं, जेन्युइन मदर है और आपको जेन्युइन मदर से जानकारी मिलती है ये तुम्हारे पिता हैं, इट इज परफेक्ट नॉलेज और नॉट, इन वन सेकेंड यू नो फॉर श्योर विदाउट एनी डाउट एंड इट इज परफेक्ट बिकॉज द सोर्स इज परफेक्ट। अगर सोर्स परफेक्ट है नॉलेज का तो नॉलेज जो आप गेन करते हैं वो तुरंत परफेक्ट हो जाती है, करेक्ट। सो इफ यू मदर सेज शी इज अ परफेक्ट अथॉरिटी, तो अगर आप उनकी बात मानते हैं देन यू नो इमीडिएटली विदाउट अंडरगोइंग बिग एक्सपेरिमेंट एंग्जाइटी 100% श्योर दैट दिस इज दैट। अगर एक बच्चे को पिता बोलते हैं बेटे ये अग्नि है और इसमें हाथ डालने से हाथ जल जाता है, अभी ये बच्चा छोटा सा बच्चा जाके एक नोबेल लॉरिएट को ये बात बोलता है जो फायर को स्टडी करता है, वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कौन सी लेयर में कितना टेम्परेचर होता है, उसका क्या ही इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, बहुत रिसर्च किया उसने, कितने सालों का रिसर्च किया। ये छोटा सा बच्चा जाकर के उस नोबेल लॉरिएट को बोलता है कि जब अग्नि में हाथ डालते हैं तो हाथ जल जाता है, तो वो नोबेल लॉरिएट को उस बच्चे की बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? हालांकि उसने कोई बहुत बड़ी बड़ी स्टडी नहीं की है, लेकिन क्योंकि उसने एक परफेक्ट सोर्स से सुना है कि हाथ जलता है तो जलता है, भले उसने एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं किया है, स्टडी किया है फायर को नहीं किया है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड है कुछ नहीं किया है, बट क्योंकि उसने सही सोर्स से ज्ञान लिया तुरंत उसका ज्ञान परफेक्ट हो गया। तो ये एक परफेक्ट ज्ञान को प्राप्त करने का ये एक तरीका है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। दिस इज द ओनली वे टू नो फ्रॉम अ परफेक्ट सोर्स। ये मैं पॉइंट इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि जो आप ये कॉलेज में जो पढ़े हुए लोग हैं उनके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि हमारी लेबोरेटरी के अंदर जो हम सीखते हैं वही ज्ञान है। नो, दैट इज नॉट द थिंग। देयर इज अनदर वे ऑफ गेनिंग नॉलेज विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सपेरिमेंट, विच इज डिपेंडेंट ऑन नोइंग द थिंग्स फ्रॉम द पीपल हु नो द थिंग्स। इसे कहते हैं डिसेंडिंग प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है। अभी आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो आप स्टडी करते रहिए एक आदमी को बैठ के, जन्म हुआ बड़ा हुआ मर गया, ये आदमी जन्म हुआ बड़ा हुआ मर गया, ऐसे स्टडी करते रहिए। आप कितने लोगों को स्टडी कर पाएंगे, फिर आप मर जाएंगे स्टडी करते करते, लेकिन तब तक भी आप कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपने सबको तो स्टडी किया ही नहीं। सो स्पेशली उन चीजों में जो विषय हमारी इंद्रियों के समझ के बहुत परे के विषय है उसमें ये एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से हम काम नहीं चला सकते। जब हम अपने माँ बाप को एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से नहीं समझ सकते तो माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप उनको समझने के लिए एक्सपेरिमेंट काम करेगा नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र में कहा गया है अचिंत्य खलो न तर्के न योजयेत। ये अचिंत्य है, दिस इज बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ आवर लिमिटेड सेंसेस, इसलिए उनको अपने सेंसेस पे पहचानने का प्रयास करना व्यर्थ है, समझने का प्रयास करना व्यर्थ है। जैसे हम उदाहरण दे रहे थे उस दिन भी, कूप मंडूक ए फ्रॉग इन द वेल, फ्रॉग इन द वेल है, छोटे से वेल में है तो, और वो मिस्टर फ्रॉग है यानी उसकी इंद्रियों की एक शक्ति है, उसकी समझ उसकी सोच उसकी एक शक्ति है, तो उसके लिए वो जो उसका कुआं है छोटा वही उसके लिए ब्रह्मांड है। अगर वो कितना भी प्रयास करे अपनी थ्योरीज लिखे बड़ी बड़ी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ दिस वेल, डायमेंशन ऑफ दिस यूनिवर्स, दैट मीन डायमेंशन ऑफ द वेल, तो वो उतना ही सोच सकता है। उसको बोलो कि ये पैसिफिक ओशन भी है तो क्या समझेगा कि पैसिफिक ओशन का मतलब, ओशन का मतलब क्या है, समुद्र का मतलब समझ सकता है एक फ्रॉग। ये उदाहरण बार बार देते हैं, यहां पर अभी चींटी घूम रही है, मच्छर है इसमें, क्या वो कोई बता सकते हैं कि ये क्या है, ये जगह ये कहां बैठे हैं आप इस समय, यहां कहां बैठे हैं आप, ये जगह क्या है, ये क्या प्रेयर हॉल किस ऑर्गेनाइजेशन का है, इस्कॉन, ये कौन सी सिटी है, कौन सा टाउन है, वीवी नगर। तो जो मच्छर वीवी नगर में है उसको कोई पता लग सकता है कि वीवी नगर ये टाउन, मैं वीवी नगर टाउन का मच्छर हूं नहीं पता लग सकता। जब तक उसकी बुद्धि और उसकी इंद्रियां उसकी समझ मच्छर जितनी है तब तक उस मच्छर, वो विद्यानगर में भले ही वो कितने भी जन्म उसने बिता दे उसको नहीं पता लगता कि ये विद्यानगर हो, ये विद्यानगर है, करेक्ट। तो ऐसे ही हम जो इस मनुष्य शरीर में है तो हम एक बड़े मच्छर हैं, मच्छर की अपनी लिमिटेशन है, हमारी एक ऐसी अपनी लिमिटेशन है। हम सोच रहे हैं ये एक हमारी अर्थ है, पर ये अर्थ क्या है आपकी, जैसे एक छोटी सी चींटी का बिल उस छोटे से किनारे में, इस पूरे रूम में एक छोटा सा छेद उसका, ऐसे ही हमारा ये विद्यानगर, हमारा ये अर्थ इस पूरे ब्रह्मांड के रिलेशन में क्या है, ऐसे ही है ना। जैसे उस चींटी को और बिल के अलावा कुछ उसको ज्ञात नहीं हो सकता, ऐसे ही हम हैं यहाँ, हमको एक मून के बारे में, मून और एक सन के बारे में नहीं पता जो हमसे सबसे पास का स्टार है। और सोचिए कितना, आप देखें कभी रात में बाहर निकल करके यहां से जाने के बाद देखिएगा लाइट जब ऑफ हो तो अनलिमिटेड। फिर हम बोलते हैं नो, बिकॉज आई कांट सी गॉड, देयरफॉर देयर मस्ट बी नो गॉड। कितने छोटे हैं हम, कितने इंपरफेक्ट हैं, तो हम क्यों ये दावा करें कि भगवान है तो हमें दिखे, हमारी सेंसेस परफेक्ट, नो इट्स इम्पॉसिबल। तो आपको कूप मंडूक न्याय, आपको मेंढक से आगे आना पड़ेगा। जब तक आप ये मनुष्य के इंद्रियों के दायरे में रहेंगे तब तक नहीं काम चलेगा। इसलिए तरीका है एकमात्र पॉसिबल तरीका भगवान को जानने का है कि जो भी क्रिएटर है, एक तरह हम देख रहे हैं कि हमारे इंट्यूशन से, हमारे इंफरेंस से होना चाहिए भगवान, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे इंद्रियां पूर्ण है, इसलिए हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम यदि वो जो क्रिएटर है वो यदि हमको बता पाए, या कोई लिंक हो उसके और हमारे बीच में, तो हम क्रिएटर को जान सकते हैं। दैट इज द ओनली वे। क्या कोई और तरीका है पॉसिबल भगवान को जानने का? दिस इज द ओनली पॉसिबल वे कि यदि हमें भगवान बताए खुद, या उनका कोई प्रतिनिधि बताए, तो ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो इसे कहते हैं, तो भगवान से जानना उसकी जरूरत है, यानी कि उसके लिए आवश्यक है योग्यता। जैसे कैटरक जानते हैं आप लोग, मोतिया की बीमारी होती है बुढ़ापे में, मोतिया आता है। तो मोतिया के पेशेंट को फिर धीरे धीरे डेंस आता है तो दिखना बंद हो जाता है। अभी मोतिया है और वो बोले मुझे तो कुछ दिखता नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं है। नहीं, आपको मोतिया है, जाओ डॉक्टर के पास, उस मोतिया का इलाज कराओ, फिर आपको दिखेगा। ऐसे ही हम क्यों भगवान को नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि या तो हम मेंढक हैं, तो चींटी हैं, तो आदमी हैं, हम सबकी एक लिमिटेशन है। भगवान को देखने की शक्ति हमें नहीं है, हमारी सीमितताएं हैं, इसलिए हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए आवश्यकता है ऐसी इंद्रियों को प्राप्त करने की। आज आपके पास ऐसी इंद्रिय है जिससे आप ये विद्यानगर को समझ पा रहे हैं, चींटी के पास वो इंद्रिय नहीं है, वो सेंस परसेप्शन की पावर नहीं है। तो ऐसे ही आपको आज की इस स्टेज की सेंस परसेप्शन पावर से ऐसी स्टेज की सेंस परसेप्शन पावर पर जाना होगा जिससे आप भगवान को परसीव कर पाएंगे। सो यू नीड टू कम टू दैट लेवल ऑफ परसेप्शन। उसके लिए चाहिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। वो सब प्रोसेस जो भगवान को देखने का है, वो पहली प्रोबेबिलिटी में बताई, केवल एकमात्र प्रोबेबिलिटी है जब भगवान खुद हमें वो बताए। तो हमारे जो वेद है, वेद का नाम सुना है आपने, वेद मीन्स नॉलेज। वो ये क्लेम करते हैं कि वेद जो है वो भगवान के द्वारा, साक्षात भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है। वेदों के अंदर ये क्लेम है, दिस नॉलेज इज फ्रॉम गॉड। अभी क्या रिएक्शन होता है जनरली मॉडर्न स्टूडेंट्स का? दिस इज ब्लाइंड फेथ, I am not going to believe it. How do I believe that from God? तो एक कहानी है। एक बच्चा, लड़का, एक बिल्कुल गहरे गुप्त रूम में, अंदर कोठरी में सोया हुआ है। सुबह हो गई, उसके माता पिता सोच रहे हैं आज क्या उठा नहीं, अभी तक स्कूल का टाइम हो गया, और जाकर के उसको फिर उठाते हैं, बेटे उठो, सूरज निकल गया, दिन हो गया, तुम क्यों सो रहे हो? तो वो अंदर से आवाज लगाता है, नहीं यहां तो सब अंधेरा है, सूरज नहीं निकला है। कि नहीं नहीं सूरज निकल गया है, तुम अंदर अंधकार में हो, तुम बाहर आओ, देखो सूरज निकल गया। वो नहीं, मैं कैसे विश्वास करूं कि सूरज निकल गया है, मुझे तो नहीं दिखता यहां पर सूरज। जब तक मैं सूरज को देखूंगा नहीं, तब तक मैं उठूंगा नहीं, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। मां बाप कह रहे हैं अगर तुम बाहर आओगे तो सूरज दिख जाएगा। नहीं, मैं बाहर तभी आऊंगा जब सूरज दिखेगा। कैसा कोई सोल्यूशन हो सकता है? तो उसी तरीके से ये एडमेंसी बिना वेदों को समझे हुए, प्रयास किए हुए, जस्ट सोचकर, ये सब ब्लाइंड फेथ है। ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट राइट यू हैव टू से दैट इट्स अ ब्लाइंड फेथ? व्हाट राइट यू हैव गॉट? आपको कौन सा, किसने अधिकार दिया ये बोलने का कि ये ब्लाइंड फेथ है? विदाउट एनालाइजिंग इट, बिना उसको एनालाइज किए, बिना उसको विचार किए, बिना, कौन लोग उसको फॉलो कर रहे हैं? जो लोग वेदों को फॉलो करने वाले हैं वो लोग मूर्ख नहीं है, बड़े बड़े लर्नेड लोग हैं। बिना उसका लिए आप प्रयास किए हुए किस बेस पे कह सकते हैं कि जस्ट इट इज ब्लाइंड फेथ? ऑन व्हाट बेसिस? कहते हैं कि सब ये शास्त्र जो है ना, सब ये सब ये आदि मानव बहुत पिछड़े हुए जो लोग थे उन्होंने कहानियां लिख दी सब ऐसी, बहुत पिछड़ा हुआ ज्ञान है ये। तो कॉमन सेंस क्या है? शास्त्र कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? संस्कृत। अगर आप किसी लिटरेचर के टीचर के पास जाएंगे, आप आज तक जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत इज संस्कृत, संस्कृत शब्द ही संस्कृति और संस्कृत शब्द से आया है। अगर आप लिटरेचर की जानकारी रखते हैं यू विल नो संस्कृत इज अ वेरी हाईली इवॉल्व लैंग्वेज, लैंग्वेजेस का भी एक अलग अलग लेवल होता है। इट्स द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज, मोस्ट हाईली साइंटिफिक एंड हाईली इवॉल्व लैंग्वेज संस्कृत। तो अगर वो लोग वो तीर चलाने वाले पेड़ की छाल पहनने वाले लोग थे तो कैसे वो इतनी सुसंस्कृत भाषा बना पाए जो आज के लोगों को समझ में नहीं पड़ती। आजकल के लोग, आज की जो लैंग्वेज है उससे कहीं ज्यादा वो हाई डेवलप, हाईली डेवलप लैंग्वेज है। वो जो पिछला वो ज्ञान है उसके अंदर ये एक्लिप्स का ज्ञान, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस का ज्ञान, टाइम को 1 सेकेंड के 10,000 पार्ट तक का नॉलेज से लेकर के टाइम का जो लाइट ईयर्स और उसके भी आगे तक का युगों तक का टाइम स्केल का ज्ञान, परमाणुओं का ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं आप लोग किसके ऊपर बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, अलग अलग ग्रहों की आपस में मूवमेंट्स के ऊपर, उसके बेस पे सब प्रेडिक्शन की जाती है। पंचांग में आप पढ़ते हैं इस दिन सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो हमारे अगर वो लोग पिछड़े हुए थे, उनके पास तो टेलीस्कोप नहीं था, उनके पास से मॉडर्न कैलकुलेशन नहीं थी, मैथमेटिक्स डेवलप नहीं थी, मैथमेटिक्स तो आपके अनुसार, तो फिर वो कैसे वो लोग ये सब साइंस डेवलप था, एस्ट्रोनॉमी का साइंस, एस्ट्रोलॉजी का साइंस, अगर वो लोग पिछड़े हुए, ये सब कहानियां हैं केवल बच्चों को बहाने वाली दादी अम्मा दादी की कहानियां हैं सब ये, तो फिर ये सब ज्ञान कहां से आया उनको? भागवतम के अंदर सब विवरण है कैसे बच्चे का सब विकास होता है अंदर, माँ के गर्भ के अंदर बिना अल्ट्रासोनोग्राफी के। आप देखें युद्धों के अंदर मॉडर्न मॉडर्न वेपन्स यूज किए जाते थे, विमान यूज किए जाते थे अलग अलग प्रकार के। तो जब शास्त्र में कोई चीज लिखी होती है ये तो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, और जब आप उस एक छोटा सा नकल करके एक एरोप्लेन बनाते हैं तब ये रियलिटी है। तो आज जो आप एरोप्लेन बनाए हैं या जो भी मोबाइल बनाए, जो भी आज से 2 साल पहले के लोगों के लिए तो वो भी एक इमेजिनेशन था, करेक्ट? तो फिर जस्ट बिकॉज कोई चीज आप आज डेवलप नहीं कर पाए हैं, आज आप पुष्पक विमान डेवलप नहीं कर पाए हैं, तो क्योंकि आप डेवलप नहीं कर पाए इसलिए वो इमेजिनेशन है, इज इट लॉजिकल? और ऐसा नहीं, हम साथ साथ देख रहे हैं कि वहां पर इतना सारा ज्ञान है जो हम अपनी मॉडर्न साइंस से देख रहे हैं कि सही है। तो ये सब हमें क्या बताता है? प्रेडिक्शंस देखिए आप, कितनी सारी प्रेडिक्शंस हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सही निकली हैं, कई के हजार साल बाद तक की प्रेडिक्शन शास्त्र में लिखी थी जो एज इट इज हुई है, हो रही है। अब प्रेडिक्शन कौन कर सकता है? जिसको सब लॉज का जानकारी हो वही कर सकता है ना। तो हजार हजार साल आई की प्रेडिक्शन करने के लिए क्या दादी माँ का काम है ये करना प्रेडिक्शंस? एक नॉलेजेबल व्यक्ति तो प्रेडिक्शन कर सकता है। तो फिर किस बेस पे हम लोग कहें, अविश्वास करें अपने इन शास्त्रों के ऊपर, किस बेस के ऊपर? शास्त्र जो है वो खुद अथॉरिटी है, सेल्फ अथॉरिटी। जैसे शास्त्र में एक लिखा है, एक वचन है कि गोबर, गाय का गोबर और कॉन्शल ये शुद्ध है। अभी कौन ज्यादा शुद्ध माना जाता है, एक ब्राह्मण या एक गाय? कौन ज्यादा सत्वगुण में कौन ज्यादा है? कौन जो थोड़ा संस्कृति जानते हैं सत्वगुण मतलब क्या है, तो एक ब्राह्मण और एक गाय, गाय तो जानवर है एनीवे, तो ब्राह्मण ज्यादा उससे उन्नत है, वो तो एक आदमी और एक ब्राह्मण है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ब्राह्मण का मल गाय के मल से अधिक शुद्ध होना चाहिए अगर हम लॉजिक लगाएं तो। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि गाय का गोबर शुद्ध है और बाकी सब मल चाहे ब्राह्मण का हो किसी का भी हो वो अशुद्ध है, उसको हाथ लगाते ही स्नान कर लेना चाहिए। तो अगर आप केवल हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें शुद्धता को, सटल पॉइंट में जाने दें, जस्ट हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप पता लगाएंगे कि वास्तव में गाय का गोबर हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल शुद्ध है, सब प्रकार के एंटीसेप्टिक क्वालिटी उसके अंदर है, ब्राह्मण के मल में नहीं है, उससे सब टाइफॉइड और सब प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन गाय का गोबर शुद्ध है। रियली आज पता लगा है साइंस, इसे कहते हैं सेल्फ अथॉरिटी। एवरी स्टेटमेंट इज अथॉरिटी इन इटसेल्फ, नो नीड ऑफ एन इंटरप्रिटेशन, इफ यू जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज राइट। जिनको इस बात में श्रद्धा है, जो जानते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट के बिना ही वो उसको मान लेंगे और वो परफेक्ट बैठेगा, और जिनको श्रद्धा नहीं है वो एक्सपेरिमेंट करके देख लें तो भी वही निष्कर्ष निकलेगा। दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। तो ये सबूत है कि शास्त्र जो है वो भगवान की वाणी है, क्योंकि वो परफेक्ट है, इम्परफेक्ट नहीं है, इसलिए मनुष्य के द्वारा दिया गया नहीं है। तो जो शास्त्र का जो क्लेम है वो गलत नहीं है, वो परफेक्ट है कि शास्त्र भगवान की वाणी है, क्योंकि वो परफेक्ट, वो बदलता नहीं है, उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। कि कल बोला था गाय का गोबर शुद्ध है, आज बोल रहे हैं मॉडर्न रिसर्च निकला, अभी पता लगा नहीं, अभी गड़बड़ हो गया, चेंज करने की जरूरत है। न्यू एक्सप्लोरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस, नो न्यू एडिशन ऑफ भगवदगीता। भगवदगीता में और पूरे शास्त्र का ज्ञान सब कुछ दिया है, इतने लाख योनियां इसकी हैं, इसकी हैं, इसकी हैं, सब कुछ, कभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको। तो अगर भगवान को समझना है तो उसका एकमात्र तरीका है वैदिक नॉलेज के माध्यम से हम भगवान को तत्वतः समझ सकते हैं। इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि भगवान एक बहुत महान व्यक्ति होगा, पर एग्जैक्टली यदि हमको समझना है तो उसका एकमात्र तरीका है स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है शास्त्र, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है भगवान को समझने का। तो ये जो इंपिरिकल प्रोसेस है, हमारे इंद्रियों के द्वारा जानने वाला मार्ग है, निश्चित रूप से इम्परफेक्ट है, और भगवान को जानने के लिए एकमात्र तरीका है वेदों के द्वारा, जो भगवान स्वयं उनके द्वारा बताया गया मार्ग है, उसके माध्यम से हम भगवान को यथार्थ समझ सकते हैं। इसे अवरोह और आरोह, आरोह पंथ असेंडिंग प्रोसेस साइंटिफिक रिसर्च, और डिसेंडिंग प्रोसेस अवरोह पंथ उसे कहते हैं। तो आज की क्लास को हम यहां समाप्त करते हैं, कल हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं कि वेद हैं, तो वेद क्या है एग्जैक्टली, इसका ओरिजिन क्या, कब से कितना है, कितना पुराना है, किसने दिया, और ये कैसे अटूट आज तक चला आ रहा है, इसको समझने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है शास्त्रों को समझने का, इसका टेक्निक क्या है, इसके अंतर्गत साक्षात्कार का तरीका क्या है। ऐसा मत समझिए कि हमारी केवल मॉडर्न साइंस में ही हम परसीव कर सकते हैं और ये बस केवल एक फेथ के अनुसार इनपुट लेना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन परसीव, यू कैन टॉक टू गॉड, बट ओनली थिंग इज यू नीड टू बी क्वालिफाइड टू टॉक टू गॉड, यू नीड टू बी क्वालिफाइड टू सी हिम विद दिस मंडेन आईज। ये छोटे से ये दो आंखें हैं बकवास, इनसे आप भगवान को नहीं देख सकते। यू गेट टू गेट ट्रेन्ड टू गेट दोज सेंसेस बाय विच यू कैन स्पीक टू गॉड, टॉक टू गॉड। वो क्या है योग्यता, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो इट्स नॉट जस्ट फेथ, इट्स ए रीजनेबल फेथ, इट्स ए रीजनेबल फेथ। हमारे शास्त्र जो हैं, तो महान महान आचार्य लोग उसको स्वीकार किए, जो ज्ञान में सब प्रकार से बड़े चढ़े थे, जो बहुत सत्पुरुष थे, जिनकी महान महान सब प्रकार से बहुत शक्तिशाली थे ज्ञान में सब तरह से, वो लोग शास्त्रों को बिलीव करते हैं। तो यदि हम अविश्वास करें कि ये सब बेकार है, कितना एरोगेंस है, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो लोग सब इंद्रियों पर संयम किए हुए थे, हमें से कितने हैं जिनको सेक्स का कोई विचार नहीं आता। वो ऋषि मुनि जिन लोगों ने ज्ञान दिया, दे वर फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। सो हाउ एरोगेंट इट इज टू जस्ट से ये सब ऋषि मुनि, ये सब बेकार है, ये तो एक मन की कहानियां है सब। अरे कहानियां तुम उस स्तर पे आकर दिखाओ, जरा अपने इंद्रियों को संयमित तो करके दिखाओ, तब तुम्हें पता लगेगा कि वो क्या स्तर था। सी, सो अवर साइंस इज मेकिंग अस सो एरोगेंट कि हम लोग ऐसे महान महान लोगों को ऐसे झुटका देते हैं, ये सब लोग सब बेकार लोग हैं, क्या लोग हैं, तुम्हारा क्या चाहे, तुम तो कुत्ते बिल्ली का जीवन जी रहे हो, तुमको जीवन में क्या है, स्त्री के पीछे भागने के अलावा कुछ काम है, नशा करना, उसके अलावा क्या जीवन है तुम हमारे, और हम लोग कंपेयर कर रहे हैं अपने को उन लोगों से, वेरी एलिवेटेड। आप प्रयास करके देखिए, प्रयास कर रहे हैं सब लोग अपने इंद्रियों को दमन करने का, हाउ मेनी ऑफ यू कुड डू इट, बट दे कुड डू इट, सो हाउ कैन यू जस्ट से दैट दे आर ऑल बोगस। ग्रेट ग्रेट बिग बिग किंग्स, वेरी सेंटली बिग किंग्स, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, वो सब लोग शास्त्र में लिख रहे हैं ये सब है, और हम लोग कह रहे हैं ये सब कहानियां, यानी कि हम अहंकार में मत रहे, वी आर फॉल्सली प्राउड। और ये होता है, ये साइंस का बेस है, इट मेक्स यू फील प्राउड, आर्टिफिशियली प्राउड, हम बहुत महान है। आज का वो जो एक भी साइंटिस्ट है वो हमारे ऋषि मुनि से एक भी नहीं है, वो अपने इंद्रियों को ही कंट्रोल नहीं कर पाए, भगवान को क्या समझेंगे। जानवर भगवान को नहीं समझ सकते ना, क्योंकि जानवरों के पास इंद्रिय संयमित करने का कोई ज्ञान नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। जब तक आदमी अपनी इंद्रियों को भी संयमित नहीं कर सकता, तब तक भगवान के विषय को समझना भी उसके लिए मुश्किल है। तो फिर कैसे हम इन अपूर्ण इंद्रियों से और इतने गर्हित जीवन में अपने सभी शास्त्रों को खंडित कर सकते हैं? तो ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे आज के इस सेशन में कि डोंट जस्ट डिस्कार्ड दिस वैदिक नॉलेज, इट्स अ ग्रेट नॉलेज। इफ यू रियली वॉन्ट टू एडवांस इन नॉलेज, यू नीड अ केयरफुल सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द शास्त्र बिफोर यू कम टू एनी कंक्लूजन। डोंट कंक्लूड विदाउट एनालाइजिंग। हरे क्वेश्चन चैलेंजेस। सूक्ष्म शरीर है जो हम स्थूल इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं, अव्यक्त मन बुद्धि और अहंकार का बना होता है। जैसे हम जानते हैं मन, सबके पास मन है, हम सब सोच रहे हैं, लेकिन मन को हम देख नहीं सकते। मैं आपका मन भी नहीं देख सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि जबकि मेरा मन है, आपका भी एक मन है। तो मन बुद्धि और अहंकार वो सूक्ष्म शरीर है, मिलाकर के उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये दोनों शरीर आत्मा को कवर किए हुए हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। एवर डेटिंग वी आर नॉट दिस सूक्ष्म शरीर। नो, डे टाइम ऑल्सो वी हैव, डे टाइम वी हैव सूक्ष्म एज वेल एज ग्रॉस, बट नाइट टाइम वी आर वॉन्डरिंग ओनली इन सटल बॉडी। नाइट टाइम केवल सटल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। वो जो बीबीएम की छत से ऊपर वो जो कूदा था, वो केवल मन के द्वारा, मन के अंदर सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। दैट्स अ बॉडी, माइंड बॉडी, दैट्स अ सटल एलिमेंट, माइंड इज एन एलिमेंट, उसका बना हुआ शरीर है, ग्रॉस नहीं है वहां पर। तो मृत्यु क्या है? हर दिन हम मरते हैं, हर रात को मरते हैं, हर रात को अपना स्थूल शरीर यहीं कहीं रहता है, यहीं कहीं रहता है, मीन्स मन के द्वारा एक और शरीर निर्मित होता है। लेकिन मृत्यु क्या है? हर दिन तो आप सुबह उठते ही वापस इस स्थूल शरीर में आ जाते हैं, लेकिन मृत्यु में क्योंकि वो शरीर अभी वापस आने लायक नहीं रहा है, आप अपने मन के शरीर के अनुरूप एक स्थूल शरीर में जाते हैं। दैट्स ओनली डिफरेंस। यस, क्या वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं आप ट्रेनिंग से आदमी का पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, तो क्या फ्रॉग को ट्रेनिंग करके उसका पोटेंशियल हमारे जैसा हो जाएगा? तो ये मनुष्यों के अंदर चेतना के अलग अलग स्तर हैं, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्शियसनेस नॉट द बॉडी। तो ये जो मनुष्य की चेतना है उसके अंतर्गत उसको पूरी तरह से फुल चेतना में विकसित होने की क्षमता है, जानवरों के पास नहीं है। लेकिन अगर भगवान चाहे तो हो सकता है। आप यहां देख रहे हैं, वन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डायग्राम, ये 5 साल पहले का इंसिडेंट है, यहां पर चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल में जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इसलिए वो जानवरों को भी कृष्ण प्रेम के स्तर तक ले आते हैं। वहां चीता और ये सब भी नाचते हैं और हरे कृष्ण बोलते हैं। सो फॉर गॉड इट इज पॉसिबल, बट नॉट फॉर अस। बट फॉर अस इट इज पॉसिबल बाय मर्सी ऑफ गॉड टू फॉलो, बाय फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शन टू ट्रेन अस। सो फॉरगेट अबाउट फ्रॉग, यू ट्रेन योर सेल्फ। नहीं, इसलिए वो एक स्पेशल ट्रेनिंग है जिससे आप इस बॉडी के लिमिटेशन से बाहर निकलते हैं। नॉट एनी ऑर्डिनरी ट्रेनिंग, इट्स ए स्पेशल ट्रेनिंग कमिंग फ्रॉम गॉड ओनली, नॉट क्रिएटेड बाय मैन। दैट इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ सेंसेस। गॉड इज ओनली वन।
Right?
एक हाथी है, नौ अंधे लोग हैं, नौ या दस जितने भी हो, वो सब लोग को भेजा जाता है जाओ हाथी को एक्सप्लेन करो। तो एक हाथी की सूंड पकड़ता है, एक कान पकड़ता है, एक पैर पकड़ता है, एक पूंछ पकड़ता है, और सब लोग हाथी को एक्सप्लेन करते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जिस आदमी के पास आंख है तो वो जान सकता है कि जब ये कह रहा है कि हाथी एक रस्सी है, यानी कि वो हाथी की पूंछ को डिस्क्राइब कर रहा है। जब वो कह रहा है कि हाथी एक पेड़ है, यानी कि वो हाथी के पैर को पकड़े हुए है, उसको पेड़ बता रहा है। तो जिस आदमी के पास आंखें हैं वो उसको तत्वता जानता है, जिस आदमी के पास पूरी आंखें नहीं है, फुल जिसके जो अंधा है, वो उसको एक एक हद तक जानता है, सम लेवल तक जानता है। तो प्रश्न ये है, जैसे हमने बताया कि इन्फ्रेंस से ही आप जान सकते हैं कि भगवान है, तो ये गलत तो नहीं है, सही है। जो भी आदमी बोले कि यस ये भगवान है, सही है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग केवल बहुत छोटे लेवल की है। He just knows that there is God, that's all. He has got no clear conception of what is God, what he does, where he lives, why he has made this, nothing. Just God exists. तो वो गलत नहीं है, लेकिन उसकी नॉलेज पूर्ण नहीं है। Everything is one, but different levels of that same one. सूरज है, एक आदमी बोल रहा है उसको केवल सूरज के प्रकाश को ही देखा है उसने, ही डजंट नो अबाउट द सन ग्लो। उसको बोलो सूरज क्या है, सूरज एक प्रकाश है जिसका कोई रूप नहीं है, जो एक शक्ति है, जो हीट है, जो लाइट है, वो सूरज है। एक दूसरा आदमी है जो और ज्यादा जिसकी विकसित है चेतना, वो जानता है कि ये प्रकाश सही है, लेकिन वो आता है सूरज ग्रह से। और एक आदमी है जो उसके अंदर क्या चल रहा है वो भी जानता है, कि अंदर एक विवस्वान, एक सूर्य देव है जो उसको संचालित कर रहे हैं। तो वो तीनों बोल एक ही चीज के बारे में रहे हैं, अलग अलग नहीं बोल रहे हैं, उसमें कोई कंपटीशन की बात नहीं, एक ही अपनी बात बोल रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी समझ के लेवल के अनुसार बोल रहे हैं। लेकिन परफेक्टली कौन जानता है, जो 100% उसको जानता है, जो उसके अंदर विवस्वान है उसको भी जानता है, वो तीनों को जानता है। लेकिन जिसकी नॉलेज केवल सनलाइट तक है, उसकी उसकी पार्शियल नॉलेज है। तो उसी तरीके से अल्लाह, तो अल्लाह मतलब क्या है, ऑल माइटी। तो इज इट रॉन्ग, गॉड इज ऑल माइटी, इट इज करेक्ट, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? सो वेयर इज द कॉन्ट्रडिक्शन, व्हाई यू से दैट अल्लाह इज डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, ऑन व्हाट बेसिस? यू आर जस्ट सेइंग अल्लाह, सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? ऑल माइटी, यस, बट इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट अल्लाह, वॉट ही डज, एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स, दैट इज नॉट अवेलेबल देयर। So to know that, then you should go further. Where is that knowledge?
There is knowledge is one, that why people are fighting
for it. People are fighting because of their ignorance. अब हाथी को पकड़ कर सब लोग बोले नहीं नहीं हाथी रस्सी है, नहीं नहीं हाथी पेड़ है। So that is because of their ignorance. But a person knows perfectly, he will say, don't fight. You are holding, आप हाथी के पैर को पकड़े हैं, इसलिए आप उसको ट्री बता रहे हैं, आप इसलिए इसको बता रहे हैं, don't fight. It is same person, but understand it in full like this. This is, ये उसकी पूंछ है, ये उसकी टांग है। So it is no question of fighting. If you will go in detail, we can explain you everything. You can ask anything. Christ kya hai, Jesus kya hai, we can tell you what level they are. So, agar aap shastra ko dekhenge, perfect knowledge of God is given in shastras. Perfect knowledge. Hum nahi bolte ki wo knowledge galat hai unki. Allah jo keh rahe ho galat hai. We are not saying that. Jesus Christ jo keh rahe ho. Kuch log bogus hain. That also we know. Those who are saying that this is incarnation of God, शास्त्रों के अनुसार बोल रहे हैं कि यहां ये फलाना जो है ये भगवान है, दैट मीन्स दे आर फॉलोइंग वैदिक सिस्टम। अवतार कह रहे हैं कि ये सब वेदों के अनुसार है, बट देन देयर इज अ सिस्टम। अगर आप मॉडर्न मेडिसिन को फॉलो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार ये चीज है, तो फिर वो मेडिसिन की बुक में होनी चाहिए ना, आप उसको अपने मन से नहीं बोल सकते ना, तो वो फ्रॉड है। यू कैन से आई डोंट फॉलो दिस मेडिसिन सिस्टम, इट इज माई ऑन सिस्टम, that's a different thing. But if you say follow modern medicine system and still you go against the system, then you are fraud. So agar aap bol rahe hain ki hum shastron mein believe karte hain, shastron ke sath chalte hain, aur fir aap shastron ki paddhati ke viparit ja kar ke apne conclusion nikalte hain, that is fraud. So there is a way how you can do that. That topic also will take.
Actually, like you said that they are ignorant, right? They are ignorant, they have a ignorant, right?
But you need to be charged. First, no. You are very correct. If there are charged particles, they will be attracted to a particular pole. So are you charged? That you have to ask. Then you will be attracted to God. But if you are not charged, you won't be able to find out God. If there is a magnet, if there are iron particles, they will be attracted towards the magnet, wherever they are. Correct? So they should be iron particles. Plastic things will not get attracted. Okay? And it should be magnet. If both things are correct, if it is magnet and that is iron particles, there is no way that there will be no attraction. Similarly, agar aapke andar Bhagwan ko samajhne ki sincere desire hai, you will come to God. You will come across a right guru who will take you to God. That is called your being charged. So God is there. Some people are finding, some are not finding. Why? God is there. Magnet is there. But you have to be iron to be attracted to God, to come to God. If you are plastic, how will you come to God? So that question you have to ask yourself, are you charged? So society, who is charged? You are talking about society, who are searching for God? Tell me. No one. Then how they will be attracted to God? That is the problem. That's why we are teaching. Be charged. Our process is to charge the people so that they will understand what is God. Ye sab jo alag alag sampradaya chal rahe hain, why these are going on? Because they are not charged. They are not searching after God. That's why they are bewildered. They are going after cheaters. Because they don't want God. They want material things on the name of spirituality. So they get cheated. If a person is genuine, Lord will arrange how to bring him. Lord is a conscious person. He is seeing. So don't be worried. Be worried about your sincerity. If you are sincere, you will be driven to God. There, what's the last statement? There?
They say that actually we can say Quran is
what? No, I understood all. Last statement, what you said? They are saying contradiction and they can prove that also?
No, they are giving them
proof. Okay. So if in a medicine conference, have you read MBBS? Aapne MBBS nahi kiya na? Will you be allowed in any medical conference to speak, to give your proof? So have they undergone the process of understanding Shastra that their proof is of importance?
They
may say anything. What is mean by providing shlokas? You start speaking some Henry books, some surgical, some statements outside the conference hall, some statement. See, I am speaking these things. That mean I know. Will they allow you to come inside? Just because you are saying appendicitis. So what? What is your qualification to even go inside and ask questions? Forget about telling the proofs. You will not be allowed inside to even ask questions in medicine. Or I will be allowed in your conference like that. So they are saying they have some proofs. They have not even studied. They have not entered the college. Where is the question of giving the proof? They have not become a student. How they can become teacher? Does someone become teacher before becoming a student? They have not become proper student of Vedic knowledge. And they are claiming themselves that they know about some proofs. That is teachers. Only a fool will accept them as a teacher. If you are sincere, rational, it is not difficult to find out what is genuine and what is wrong. It is not difficult. You are saying you are confused, but there is no confusion. If you are really interested in knowing what is right, what is wrong. I had given a statement. One man is running away. पीछे पुलिस वाला भाग रहा है, चोर 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 चोर, अभी चोर भी बोलने लगा, चोर 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 चोर, अभी एवरीबडी इज कंफ्यूज, हु इज चोर, ये चोर वो चोर, सो दैट कंफ्यूजन मे बी देयर बट दैट डजंट मीन दैट देयर इज नो वे यू कैन फाइंड आउट हु इज राइट हु इज रॉन्ग. A CID inspector will very easily find who is chore and who is not. Chore ki daadi mein tinka. There was a very intelligent king. So, pata nahi lag raha tha ki chore kaun hai. To bola, dekho, ek sabko ek aise aise haath kahin lagwaya ek jagah pe. Andar aao, yahan magical kuch cheez hai, uspe haath lagana hai sabko. Aise kuch kiya. Aur baad mein bola, abhi kaun bata, jaldi batao kaun chore hai. To kisi ne nahi bataya kaun chore hai. Theek hai, to abhi jinhone bhi अभी ये सब जो अंदर गए थे तो अभी इसकी वजह से क्या होगा कि जो चोर की होगा उसकी दाढ़ी में तिनका आ जाएगा इमीडिएटली. जो चोर था उसने अपनी दाढ़ी को देखना शुरू किया, दाढ़ी में तिनका तो नहीं आ गया, तो समझ में आ गई. ही इज द चोर. सो इंटेलिजेंट मैन नोज हाउ टू आइडेंटिफाई द रियल चोर. सो इफ यू आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मीन्स इफ यू आर सिंसियर टू रियली नो हु इज जेन्युइन, इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू फाइंड टू डिस्क्रिमिनेट सेंट्स फ्रॉम स्विंडलर्स. It is not difficult, and we will teach you how to do that. Please come regularly. It will be very easy, not difficult. People are confused because they don't want to know God. They want cheap gods. They want gods who can get them money. They don't want to surrender to God. They don't want to serve God. They don't want to understand who is the supreme person. कोई आदमी बोल दे, बस जय ये बोल दो तो आई नौकरी लग जाएगी. अरे भाई ये बोलने से मेरी नौकरी लग गई तो मुझे और क्या चाहिए? मेरे लिए ये भगवान हो गया. That's all. That's why they follow that type of God. They are not genuinely interested in God. That's why they are being cheated. Yes?
So you talk about Shastra and you talked also about Veda. Sir, the Veda are written in Sanskrit. They have some Rucha included in the Veda. Sir, one of my friends was in MD or something. He had to study. He was already having Veda subject in Sanskrit. And sir, he just told me that one Rucha is translated into Gujarati or even another language. It is something 100 pages. Just two lines of that Rucha is translated into 200 pages to 100 or 200 pages. Sir, is it true? Is that Sanskrit two lines mean such a lot of things?
See, Vedic knowledge is so depth, so deep. Because it is about the whole everything, not just this material world. It is about the spiritual world also. This whole material science, how many books are there, how many libraries are filled with this material knowledge? It is dealing just with earth, water, fire, air and ether. And some study about the mind. Correct? And so many libraries are filled. Just imagine the Shastra deal with not just this earth, water, fire, air, ether, about mind, intelligence, ego, atma, paramatma. So, it's very vast knowledge. So, definitely, there are so many volumes and things can be explained in very, very great vastness. But that academic scientific study of Sanskrit will never make them understand the Shastras perfectly. That is another thing. It is not an academic subject. Shastra is not an academic subject. That to get a PhD, we do some research and get it. No, we will tell you tomorrow what is the way to understand Shastra. Not that academic. Your friend will never able to understand God by becoming PhD in Sanskrit. Rather, he will go further away from God.
Sir, have you seen Veda?
Have you seen Veda? What do you mean by seen Veda?
Book or something.
Again, the same problem. You are having a very, very important conception about your this two little eyes. Even a dog sees Veda. An insect sitting on any book is also seeing that. That's what we are doing. If we have not read Veda, then from where we are speaking all these things? Vedaishcha sarve raham eva vedya aham vedanta krit ved videva chaham. This is a statement of Bhagavad Gita. In all the Vedas, Vedaishcha sarve aham eva vedya. I am to be known from all the Vedas. Aham ved videva chaham. Vedanta krit, I am the writer of the Vedas. Ved videva chaham. And I am the knower of the Vedas. So, the very person who has written the Vedas, the source of the Vedas, the person to be known from the Vedas, our whole movement is centered around understanding Him. Any other question? Okay, we'll stop here. Thank you very much. So we'll have some little kirtan. I'll late ho gaya thoda. And then prasadam. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai.